कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तेरे चरणों में मैं झुका
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इन दिनों हम गिनती की पुस्तक से अपने अध्ययन को कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय का अध्ययन किया और इसमें हमने मरियम और हारून की मृत्यु, मूसा का आज्ञा उल्लंघन, एदोमियों द्वारा इसराइल को रास्ता न देने के बारे में देखा था। आज हम उससे आगे अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पूर्व के हम अध्ययन करें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और आज के अध्ययन के लिए उससे सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका वचन जीवित है, जो दोधारी तलवार से तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेदता है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन के द्वारा आज हम सब से बोले और बातचीत करें। मेरी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, कानों और हृदय और विचारों को खोल दे, उन्हें एकाग्रतापन दे, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बातचीत करने पाए। जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश व चिंताओं में हैं, प्रभु आप उनसे विशेष रूप से बातचीत करें ताकि आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में शांति को पाकर आपकी महिमा कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना आपके इकलौते बेटे, हम सबके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारा विषय है आज के अध्ययन के लिए प्रथम युद्ध में इसराइलियों की विजय और कांसे का सर्प। 20वें अध्याय में हमने देखा कि उनकी अर्थात निर्जन प्रदेश और जंगल की यात्रा समाप्त हुई और अब वे चलने लगे और इस अध्याय में उनको प्रथम युद्ध में सफलता मिली। यहाँ उनकी आठवीं और अंतिम कुड़कुड़ाहट का भी वर्णन लिखा है, जिसमें अग्निय सर्पों और पीतल के सर्प की भी चर्चा की गई है, जो प्रभु यीशु के उदाहरण व उसकी क्रूस की मृत्यु का प्रतीक है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखें इसराइल की विजय। हम गिनती की पुस्तक उसके 21 अध्याय और उसके 1-4 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिये आए थे उसी मार्ग से अब इसराइली आ रहे हैं, इसराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इसराइलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर देंगे। इसराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, सो उन्होंने उनके नगरों समेत उनको भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुन्द्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। मित्रों, यह प्रथम विजय है। मिस्र छोड़ने के बाद अमालेकियों से संघर्ष जंगल यात्रा के आरंभ में है। परमेश्वर ने स्पष्टतः उन्हें यह विजय प्रदान की, तो भी अब वे होर पर्वत से कूच करके लाल सागर के किनारे होकर चलते हैं, क्योंकि एदोम ने उन्हें सीधे रास्ता नहीं दिया था। अब वे घूमकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से उस देश में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। इस कठिन रास्ते पर लोग बहुत निराश भी थे। अत्यधिक निराश होने के कारण उन्होंने पुनः कुड़कुड़ाना और शिकायत करना शुरू कर दिया। मित्रों, अभाग्यवश आज हम में से अधिकतर लोगों की भी यही आदत पड़ी हुई है। जब जीवन सख्त व कठोर प्रतीत होता है तो हम शिकायत एवं बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि इसराइलियों ने किया। आइए हम आगे देखते हैं आठवीं बार विरोध अर्थात कुड़कुड़ाहट। हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसराइली लोगों की यह आठवीं व अंतिम विरोध है। वे मरना के लिए पुनः शिकायत करते हैं। आपको याद होगा कि मिली जुली अर्थात मिश्रित भीड़ ने पहली बार भी यात्रा के दौरान इसकी शिकायत की थी। मन्ना एक स्वादिष्ट भोजन था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर ने याद दिलाया कि उसके खाने से उनके पैर नहीं फूले अर्थात नहीं सूजे। फिलीपीन देश में एक डॉक्टर ने बताया कि पैरों का फूलना और बेरी बेरी रोग के होने का कारण भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण से होता है। अतः मन्ना में उन्हें पूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध था और यह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी था, तो भी वे शिकायत करते थे। मेरे मित्रों, कुछ लोग अक्सर एक विशिष्ट भोजन की शिकायत करेंगे। उन्हें किस्मों के कारण बर्गर व विशेष भोजन अधिक पसंद होगा। यह जानकर ताज्जुब होता है कि हम कितनी जल्दी शिकायत करने लगते हैं, और विशेष तौर पर परमेश्वर की चीजों के संबंध में। मैंने देखा है कि लोग चर्च में सीट के लिए शिकायत करते हैं, परंतु जब वे फुटबॉल मैच या खेल देखने को जाते हैं तो स्टेडियम में बिना टोकन वाले कठोर सीट पर बैठ जाते हैं, परंतु उनके मुंह से एक शब्द भी उफ का नहीं निकलता है। परंतु अब मैं स्वीकारता हूं कि अब मेरे प्रचार के समय उन्हें शिकायत नहीं होती। परंतु यहां क्या बात है जो बहुत रोचक नहीं है, कि हम कैसे ईश्वर के विरोध शिकायत करते हैं। कितनी बार हम उसकी अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देते और उसकी भलाइयों से आनंदित होते हैं। मेरे मित्रों, मेरा सोच वास्तव में यह है कि अब परमेश्वर भी उनकी इन छोटी छोटी बातों की शिकायतें सुनकर ऊब चुका था। उनके कथनानुसार उनका मन मन्ना में नहीं लगता, यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं कि वह उन्हें जंगल में मार डालने के लिए ले आया है। परमेश्वर थक चुका है और दंड देने को तत्पर है। आइए आगे देखें, कांसे का सर्प, हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इसराइली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं हमने पाप किया है। अब वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने प्रभु के और मूसा के विरोध में पाप किया है। आज भी यह बहुत से लोगों की समस्या है। वे छोटे लड़के छोटी लड़की की तरह सीधे बनकर चर्च की सदस्यता लेकर ईश्वर के साथ आरंभ करना चाहते हैं, परंतु हम सबको अपनी शुरुआत परमेश्वर के साथ एक पापी समझकर या मानकर करना है। आपने देखा कि मसीह पापियों के लिए मरा और वह पापियों को प्यार भी करता है। यदि आप इस श्रेणी में नहीं आते तो मसीह आपके लिए नहीं है। वह पापियों के लिए आया और पापियों के लिए मरा। मित्रों, इन लोगों को अपने विश्वास का परिचय देना है, क्योंकि उनके पास कुछ भी भले कार्य नहीं है। वे ईश्वर के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेकर नहीं आते कि अब वे अच्छे बनेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। परंतु वे परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और तब विश्वास से ईश्वर उनको पास आने देगा। हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। मित्रों, यहाँ एक अद्भुत सबक मिलता है। उन्हें एक कांसे के सांप की ओर विश्वास से देखना था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसी मूर्खतापूर्ण बात है, उन्हें कुछ और की जरूरत होगी, कुछ अधिक ठोस और वास्तविक, बजाय इसके कि मुड़कर एक कांसे के सर्प की ओर देखे। परंतु निसंदेह यदि कोई व्यक्ति मुड़कर कांसे के सर्प की ओर न देखे तो वह अवश्य मर जाएगा। मेरे मित्रों, अब हमें इसके अर्थ का अनुमान या हमारे लिए सबक की जरूरत नहीं है। जब हमारा प्रभु एक रात निकोदिमुस से बात करता था तो उसने कहा, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पढ़ते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। मित्रों, आप कहेंगे मनुष्य का पुत्र कैसे ऊंचे पर चढ़ाया गया था? आप ये भी कहेंगे क्रूस पर। जी हाँ, वह बरब्बा के क्रूस पर मर रहा था और बरब्बा एक चोर व डाकू था। बरब्बा अपराधी था और मृत्यु की सजा के योग्य भी था, परंतु यीशु नहीं था। हमारा प्रभु हमारे लिए पाप बन गया। उस क्रूस पर उसने न केवल बरब्बा की जगह ली, परंतु आपकी और मेरी भी जगह उसने ग्रहण की। परमेश्वर ने इसकी इजाजत उसे दे दी और ऐसा होने दिया, क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है। परंतु परमेश्वर उसके प्रेम से हमें बचा नहीं सकता। यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने संसार को बचा लिया, कदापि नहीं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब परमेश्वर आपसे क्या करने को कहता है? मेरे मित्र, देखें और जीवित रहें। मसीह को देखें, वह वहां आपका स्थान लिए है। आप पापी हैं और मृत्यु के योग्य हैं। मसीह को मरना नहीं चाहिए था, परंतु वह आपके लिए मरा, सिर्फ आपके पापों के लिए। मित्रों, हमने पढ़ा है कि यहां कांसा का सर्प बनाया गया कि जो उसे देखे वह बच जाए, जिन्होंने नहीं देखा वे मर गए। आज भी यह बात इतनी ही सच है। या तो आप मसीह की ओर एक उद्धारकर्ता होकर ताकते हैं क्योंकि आप पापी हैं, या आप उसको देखने से इनकार करते हैं। मित्रों, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आपने कितनी बार बपतिस्मा लिया या कितने धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं, कितनी संख्या में आपने कलीसियाई सदस्यता ग्रहण की, या आपके पिता अथवा माता कौन थे, आप एक पापी और दोषी हैं, नरक जाने योग्य व्यक्ति हैं। आपको प्रभु यीशु की ओर देखना चाहिए। यह बहुत ही सरल है और उतना ही अधिक कठिन भी है। आजकल लोगों की समस्या क्या है? वे अधिकतर स्वयं को देखते अथवा अपने अच्छे कार्यों को इस विश्वास से कि उनके अच्छे कामों के द्वारा वे बच जाएंगे। यह लोगों के लिए समस्या है कि वे स्वीकार करें कि वे पापी हैं और मसीह की ओर ताकते रहें और पूर्ण भरोसा रखें कि वे उसके द्वारा से बचाए जा सकते हैं। मेरे मित्रों, अब इसराइली लोग यात्रा में आगे चलते हैं और अर्नोन नदी के पार पहुंचते हैं, जिसे हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी, जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मुआबियों और एमोरियों के बीच होकर मुआब देश का शिवाना ठहरा था। तब हम आगे पढ़ते हैं 21 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं उन्हें पानी दूंगा। अब हम आगे देखते हैं प्रथम गान। अब सुनिए कितना भिन्न लगता है। यहां प्रथम बार उन्होंने धन्यवाद और स्तुति का गीत गाया। बंजर भूमि अर्थात मरुस्थल और कुड़कुड़ाना भी गाने में है। अब हल्लेलुया संगीत मिलता है। हम गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 से 20 पद में पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, उस समय इसराइल ने यह गीत गाया कि हे कुएं उबल आ, उस कुएं के विषय में गाओ, जिसको हाकिमों ने खोदा और इसराइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद दिया। फिर वे जंगल से मताना को और मताना से नहलियल को और नहनियल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मुआब के मैदान में है और पिसका के उस सिरे तक भी जो इशिमोन की ओर झुका है पहुंच गए। मित्रों, यहां पर हम पाते हैं कि पानी प्रबंधन एवं जल वितरण के लिए वे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रधानों ने तथा लोगों के अन्य अगुओं ने कुएं खोदे। यहां आपको पूंजी व श्रम का अद्भुत सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पाते हैं इसराइल का अगला प्रस्थान। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब इसराइल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा। इसराइलियों ने एमोरियों के राजा सीहोन से उनके देश से गुजरने की अनुमति मांगी। सीहोन उनके विरोध सेना गठित करता है। तब हम आगे पढ़ते हैं गिनती 21 अध्याय के 24 पद में लिखा है, तब इसराइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से याबोक नदी तक, जो अमोनियों का सिवाना था, उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों का सिवाना तो दृढ़ था। परमेश्वर ने इसराइल को सीहोन पर विजय प्रदान की। इसके बाद हम और आगे देखते हैं गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसके 33 पद में लिखा हुआ है, तब वे मुड़के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। मित्रों, हम पाते हैं कि प्रभु ने मूसा से कहा कि उसे ओग से भयभीत नहीं होना चाहिए। ओग बाशान का बादशाह अर्थात राजा था। उन्होंने उसे, उसके पुत्रों को तथा लोगों को भी घात किया और बाशान देश को ले लिया। इसराइली लोग आगे बढ़ते हैं। वे ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करते और परमेश्वर उन्हें विजय देते जाते थे। परमेश्वर उन्हें मोआब के विरुद्ध भी विजय देगा और वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए तत्पर रहेंगे। मित्रों, यहां पर अध्याय 21 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 22 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और अध्याय 22 में हमारा विषय है विलाम का मार्ग अर्थात उसका लालच। इस पुस्तक का यह भाग 22 से 25 अध्याय में विलाम नबी की कहानी अर्थात कथा वर्णन करता है। धर्मशास्त्र के पन्नों में यह एक ऐसा अद्भुत चरित्र है जिसको काश मैं आपको समझा सकता और उसके विषय इतना अधिक जानता कि उसके चरित्र का सही मूल्यांकन भी कर पाता। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वचन में हजारों लोगों के नाम उद्धृत हैं। पवित्र आत्मा हमें उनकी एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनके चरित्र का आंकलन केवल कुछ ही शब्दों में करता है जिसे हम देख चुके हैं, पर अनेकों अपवाद भी हैं। वे केवल छाया में ही दिखाई पड़ते हैं। उनके वास्तविक स्वभाव को अंधेरा छिपा देता है। वे टेढ़े व्यक्ति हैं। मुझे निम्न लोगों के बारे में निश्चित रूप से नहीं मालूम, जैसे कैन, एसाव, सिमसोन, शाउल, अबशलोम या यह व्यक्ति विलाम। उनकी व्याख्या कैसे करूं, इसका मुझे बोध नहीं है। नए नियम में भी ऐसा ही एक नौजवान शासक जो अमीर अर्थात धनवान था, यीशु मसीह के पास प्रश्न पूछने आया, पर क्या फिर कभी लौटा? फिर हम देखते हैं यहूदा, कौन उसे समझेगा? हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि वह नाश हो गया, परंतु वह अद्भुत जन था जो 3 वर्ष तक प्रभु के पीछे चला और कोई भी नहीं जान पाया कि वह इतना धूर्त था। केवल स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही जानते थे। तब देमांस, जो इतना विश्वास करता, पर बाद में उसने पौलुस का साथ छोड़ दिया, और हन्नन्याह और सफीरा के बारे में भी हम जानते हैं, और उनके बारे में हम क्या कहें? मित्रों, बिलाम भी पहली पुरुष है या रहस्यमय चरित्रों में से एक है। एक लेखक का कथन था कि धर्मशास्त्र में सबसे विचित्र चरित्र है। कुछ उसे परमेश्वर का सच्चा नबी भी मानते हैं, दूसरे धर्म का उत्पाती। क्या विलाम ईमानदारी से ईश्वर की सेवा करना चाहता था, या केवल झूठा या ठग या धूर्त था? अच्छा होगा कि आप स्वयं ही इसका निर्णय लें। मित्रों, हम ऐसा भी कह सकते हैं, चूंकि वे विचार योग्य नहीं है अतः उन्हें भूल जाना ही बेहतर होगा, परंतु मुझे बताना चाहिए कि उनमें से कुछ को धर्मशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। मीका ने कहा, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरोध कौन सी युक्ति की, और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और सितोम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे पाते हैं। मीका इसराइल से कहता है कि उसे न भूलें, तो हमें भी उसके चरित्र को हटाना नहीं चाहिए। मित्रों, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मशास्त्र में मरियम, जो यीशु की माता है, के बजाय बिलाम के बारे में अधिक विवरण मिलता है? कई प्रेरितों से भी अधिक बिलाम की चर्चा है। नए नियम में उसका नाम 3 स्थानों पर उद्धृत है और सब जगह स्वधर्म त्याग से संबंधित है। दूसरे पत्रस की पुस्तक में बिलाम का मार्ग, यहूदा में बिलाम की गलती अर्थात त्रुटि, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में विलाम के सिद्धांत की चर्चा है। विलाम एक मिद्यानी पुरुष था, वह विख्यात नबी भी था, वह अच्छा प्रतिफल बटोरता था, पर क्या वह सच्चा व असली और निष्कपट था? इसके पहले कि उसका आंकलन करें, उसकी कहानी सुने, आइए हम देखते हैं विलाम के बारे में। गिनती 22 अध्याय उसके 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं, तब इसराइलियों ने कूच करके यरीहू के पास यर्दन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए, और सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इसराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है। इसलिए मोआब यह जानकर कि इसराइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इसराइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। मित्रों, हम देखते हैं कि इसराइल देश में प्रवेश करने पर है। मोआब का राजा बालाक इस बात का गवाह था कि अमोरी और ओग वाशान के राजा को क्या हुआ था। वह सोचता था कि ऐसा क्या करें जिससे इसराइल को देश से बाहर निकाला जाए। क्या वह उन पर चढ़ाई करे? सच पूछे तो उसे नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए, अतः उसने एक नबी को सेवा के लिए नियुक्त किया। हम गिनती की पुस्तक 22 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। मेरे मित्रों, वह बालाम को बुलाने को दूत भेजता है और स्वाभाविक था कि यह नबी उस सारे देश में प्रसिद्ध था। बालाक उसे पैसे देकर बुलाता है कि वह इसराइली लोगों के विरोध में भविष्यवाणी करे। इन लोगों ने यरदन नदी के क्षेत्र को पूरा कब्जा में कर लिया था और बालाक की इच्छा थी कि उन्हें उस देश से बाहर निकाल दे। मित्रों, हम जानते हैं कि इसराइली लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे और इनको आशीष देना परमेश्वर का काम था, और विलाम को इसलिए बुलाया गया ताकि वह इसराइलियों को श्रापित करे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे श्रापित किए जाएं। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के लोगों को सताना चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करते हैं जो उस पर विश्वास करते और उसके मार्ग पर चलते हैं। जैसा कि उसने इसराइलियों की रक्षा की, वह आज भी मेरी और आपकी रक्षा करता है और अपनी आशीषें व अपनी प्रतिज्ञा की बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है। क्या आज आप उसके प्रतिज्ञा के अनुसार या उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में चाल चल रहे हैं? यदि नहीं, तो निश्चय जाने कि विनाश हमारे साथ भी हो सकता है। परंतु यदि हम इसराइलियों के अनुसार उनकी तरह हम परमेश्वर की बातों को मान लें, तो निश्चय जाने कि आशीष मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मेरे मित्रों, आज अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा हमने अवश्य ही नई बातों को सीखा है जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू जो हो वह जायरा, जो है जग भर का पालनहारा, हर जरूरत को तू जानता है प्रभु, और कमी पूरी करता सदा।
Yeshua,
तू ही है सच्चा।